ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। जगदलपुर में आज माओवादी संगठन के एक शीर्ष नेता पापा राव सहित 18 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के 4,95,000 से अधिक हितग्राहियों को जारी की राशि। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में सुनवाई फिर से शुरू। और छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ प्रथम खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने किया इस प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। जगदलपुर में आज माओवादी संगठन के एक शीर्ष नेता पापा राव सहित 18 माओवादियों ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जाता है कि पापा राव माओवादी संगठन में स्टेट जोनल कमेटी का सदस्य था और इस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान इन माओवादियों ने 8 AK-47 सेल्फ लोडिंग राइफल, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित अन्य हथियार भी सौंपे हैं। पापा राव और उनके साथियों के आत्मसमर्पण को सार्थक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार ने आगामी 31 मार्च तक नक्सलवाद के पूरी तरह उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका संकल्प और 31 मार्च इसी महीने पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है तो समय नजदीक है, तो समय रहते पापा राव सरेंडर किया है तो अच्छी बात है।
वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज जगदलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पापा राव के आत्मसमर्पण के बाद अब छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शीर्ष स्तर पर कोई भी माओवादी नेता नहीं बचा है।
ये जो पुनर्वास हुआ है इसमें पापा राव नामक DKSZC स्तर के एक नक्सली अपनी पूरी टीम के साथ हथियार के साथ वापस आए हैं और अब हमारे बस्तर में, हमारे छत्तीसगढ़ में DKSZC लेवल का भी अब कोई सक्रिय माओवादी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं। पूरा ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र बस्तर रहा है, 7 जिला। बस्तर का 95% 96% लैंड एरिया वह भी मुक्त हो चुका है, बस 30-35 की संख्या शेष रह गई है। और इसलिए मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ कि समस्त बस्तर नियत समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा।
बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बचे हुए माओवादियों से भी समाज की मुख्य धारा में लौटने की अपील की है।
आज दिनांक दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी का साउथ सब जोन ब्यूरो के इंचार्ज पापा राव एवं उनके साथ कुल 18 माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर समाज मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आज आए हैं और आने वाले समय में शेष जो माओवादी कैडर अभी बहुत कम संख्या में बच गई है उनसे भी हमारा अपील जारी है और प्रयास भी जारी है उन्हें भी मुख्य धारा में लेने के लिए। उसके पश्चात स्तर में नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त करने की दिशा में मजबूती से एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
गौरतलब है कि माओवादियों का शीर्ष नेता पापा राव सुकमा जिले का रहने वाला है। वह पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का इंचार्ज और दक्षिण सब जोनल ब्यूरो का सदस्य भी रह चुका है। पापा राव को वर्ष 2010 में हुए ताड़मेटला कांड का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। केंद्र सरकार ने उन खबरों और सोशल मीडिया के जरिए फैल रही अफवाहों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत LPG कनेक्शनों के लिए रिफिल बुकिंग की समय सीमा को संशोधित करके 45 दिन कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है और मौजूदा रिफिल बुकिंग की समय सीमा अपरिवर्तित है। शहरी क्षेत्रों में ये 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बनी हुई है। चाहे कनेक्शन का प्रकार कुछ भी हो, सरकार ने यह भी दोहराया है कि देश में पर्याप्त LPG स्टॉक उपलब्ध है और लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने लोगों से ऐसी गलत सूचनाओं पर विश्वास न कर उन्हें प्रसारित नहीं करने और अनावश्यक या घबराहट में LPG रिफिल बुकिंग से बचने की सलाह दी है। इस बीच भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि देश भर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अनुयायी ही अनुसूचित जाति का दर्जा पाने के पात्र हैं। एक फैसले में न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य धर्म जैसे कि ईसाई धर्म में धर्मांतरण करने से अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। न्यायालय ने कहा है कि एक बार कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेता है और सक्रिय रूप से उस धर्म का पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग PSC की परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिलासपुर उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों को यथावत रखते हुए चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने NCP नेता रामावतार जग्गी की हत्या के मामले में सुनवाई फिर से शुरू कर दी है। मुख्य न्यायाधीश अमित सिन्हा और न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने इस मामले में आरोपी अमित जोगी और रामावतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी को नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है। गौरतलब है कि 4 जून 2003 को NCP नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे। अमित जोगी को छोड़कर 28 लोगों को सजा सुनाई गई थी। वहीं 31 मई 2007 को रायपुर की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज बड़ौदा बाजार में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 4,95,000 से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में 495 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अंतरित की। इनमें आदि परंपराओं के संरक्षक माने जाने वाले 22,000 से अधिक बैगा और गुनिया परिवार भी शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि सरकार का संकल्प परिश्रम का सम्मान, श्रमिकों का कल्याण और भूमिहीन कृषि मजदूरों का सशक्तिकरण करना है।
जो भूमिहीन कृषि मजदूर है, किसान मन के काम करते हैं लेकिन खुद उमन कर पास में भूमि नहीं है और हमारी सरकार पिछले साल से वाला 10,000 रुपया देने के काम करते है। इस साल दूसरे साल के आज हम देख रहे तो कर बड़ा फायदा हो थे। कौन अपन छोटे दुकान में बड़ा करे थे, कौन अपन बेटा बेटी मन के पढ़ाई लिखाई में काफी किताब मिलकर उपयोग करे थे। तो इस तरह से हमारे भूमि कृषि मजदूर मन के योजना के 10,000 के लाभ हुए थे।
आकाशवाणी कल से अपने सुबह के प्रसारण की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के पूर्ण संस्करण से करेगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्रालय के हालिया दिशा निर्देश में राष्ट्रगीत के 6 श्लोकों को शामिल किया गया है। आकाशवाणी के सभी स्टेशन कल से राष्ट्रगीत का पूर्ण संस्करण प्रसारित करना शुरू कर देंगे। पूर्ण संस्करण की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड है। प्रसारित होने वाला पहला संस्करण प्रसिद्ध हिंदी शास्त्रीय गायक पंडित चंद्रशेखर वाजे द्वारा राग देश में गाया गया है। छत्तीसगढ़ में आज से प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तहत खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में अब से कुछ देर पहले शुभारंभ समारोह शुरू हो गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाई, उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव के अलावा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक सहित अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। 3 अप्रैल तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के तहत एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग और स्विमिंग की 7 खेल स्पर्धाएं होंगी। इसके अलावा मलखम और कबड्डी को डेमो खेल के रूप में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में आयोजित किए जाएंगे। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में देश के करीब 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 3,000 से अधिक जनजाति खिलाड़ी और अधिकारी भाग ले रहे हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले ही दिन छत्तीसगढ़ ने तैराकी प्रतियोगिता में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कर्नाटक 5 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं ओडिशा 1 स्वर्ण सहित 4 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल ने आज लोकसभा में छत्तीसगढ़ में रेल अवसंरचना के विकास के संबंध में सवाल पूछा। जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल मंत्रालय ने दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इनमें छत्तीसगढ़ के 32 स्टेशन भी शामिल हैं। श्री वैष्णव ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशनों का कार्य पूरा हो चुका है। इनमें अंबिकापुर, भानुप्रतापपुर, भिलाई, डोंगरगढ़ और उरकुरा स्टेशन शामिल हैं। महासमुंद जिले के खल्लारी मंदिर में बीते 22 मार्च को हुए रोपवे हादसे में घायल एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 2 हो गई है, वहीं 15 घायलों में से 2 की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। इस बीच रोपवे हादसे की जांच के लिए प्रदेश कांग्रेस द्वारा गठित समिति ने घटना स्थल पहुंचकर रोपवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने वहां उपस्थित लोगों से रोपवे संचालन के संबंध में जानकारी ली। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रोपवे दुर्घटना में प्रभावित परिवारों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। उन्होंने दिवंगत श्रद्धालु के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य के वन्य जीव प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण विभाग ने प्रदेश के सभी मुख्य वन संरक्षकों को पत्र जारी कर वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र में आवास कुत्तों के प्रवेश की रोकथाम के लिए निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदलपुर में आज माओवादी संगठन के एक शीर्ष नेता पापा राव सहित 18 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। मुख्यमंत्री विष्णु साय ने आज दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के 4,95,000 से अधिक हितग्राहियों को जारी की राशि। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की हत्या के मामले में सुनवाई फिर से शुरू। और छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ प्रथम खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स। केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने किया इस प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।